ओम शांति। प्यार का सागर, हम सबका प्यारा बाबा और प्यारे बाबा की ये बहुत प्यारी प्यारी रचना और विशेष करके डबल विदेशी बाबा के बच्चे जो दूर देश में रहते हुए भी बाबा के प्यार में पल रहे हैं, उनको मैं अपने रूहानी प्यार का अनुभव क्या सुनाऊं। बचपन ही बाबा के घर में बीता, मेरी शारीरिक आयु जब 4 साल की थी, 4 ईयर्स ओनली, तब हमारी मम्मा मातेश्वरी जगत अम्बा 35 दादियों को लेकर मेरे गांव में आई थी। आप सोच सकते हैं, एक बहुत छोटा सा विलेज जहां पर कोई व्यवस्थाएं, साइंस के साधन नहीं, न लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था, न बिजली, न लाइट, न कुछ। और बाबा ने हमारी दादियों को, मम्मा को एक छोटे से गांव में भेज दिया और 3 दिन वहां रही। मुझे तो याद भी नहीं है, लेकिन हमारे लौकिक पिताजी, चाचा जी, माता जी, बहन जी, सबके सब बाबा के परिवार से जुड़ गए बाबा के साथ। और पूरे गांव में एक सुंदर पाठशाला बनी, उसी परिवार में पालना हुई, पढ़ाई हुई। और जब मेरे शारीरिक आयु 15 साल थी, मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था, तो 71 में मैं मधु बनाया पहली बार। और जब मधुबन में आया तो बाबा अव्यक्त हो चुके थे, मम्मा भी अव्यक्त हो गई थी। लेकिन अव्यक्त होने के बाद बाबा ने दीदी और दादी, दीदी मनमोहिनी जिनका लौकिक नाम था गोपी, और दादी प्रकाशमणि जिनको बाबा प्यार से कुमारका दादी कहते थे, कुमारका बच्ची, तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद बाबा ने इन्हीं 2 को इस पूरे परिवार की पालना करने, इनको संभालने की सेवा अर्पित की। और वो कलश मिला था 21 जनवरी 69। उसके बाद दीदी और दादी ने बाबा के सभी महावाक्य जो साकार में बाबा कहते थे, उनको प्रैक्टिकल स्वरूप देना शुरू किया कि बाबा तो कह के गए लेकिन अभी ये साकार होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने यज्ञ का विस्तार शुरू किया। और यज्ञ के विस्तार में, क्योंकि बाबा कहते थे ऐसा समय आएगा जो आबू रोड से माउंट आबू तक बच्चों की क्यू लगेगी, बहुत ढेर बच्चे आएंगे, उनके लिए बहुत बड़ा बड़ा स्थान चाहिए, हाल चाहिए, कमरे चाहिए, मकान चाहिए। तो साकार बाबा जो बोलते थे, बाबा के सामने तो बहुत छोटा सा परिवार था, 1 लाख भी नहीं था, और मकान केवल एक छोटा पांडव भवन था, उसमें भी बहुत विस्तार हुआ। अभी जब मैं आया हूं तभी भी चल रही थी कारोबार, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और अगर 100 लोग आते थे, 100 लोग, तो भी वहां रहने की व्यवस्था नहीं होती थी। पानी एक जगह गर्म करते थे और बाल्टी से लेकर के कमरों में देते थे। साइंस के कोई साधन नहीं थे। धोबी घाट भी पाटे पर हाथ से होता था, कपड़े धुलते थे। रोटी भी भोजन भी लकड़ी के ऊपर चूल्हों पर बनता था। एक बिल्कुल साधारण सा परिवार, साधारण सी जीवन, सब काम कैसे बाबा के बच्चों से कराना है। नौकर नहीं थे घर में, कोई भी मजदूर नहीं थे, क्योंकि बहुत बेगरी पार्ट से यज्ञ को आगे बढ़ रहा था, बाबा चला रहे थे। तो दीदी दादी ने प्लानिंग की और उन्होंने पूरे परिवार को संगठित किया। जितनी भी दादियां अलग अलग स्थानों पर थीं, उन सबको साथी बनाया, सहयोगी बनाया और भाइयों को भी चांस मिलना शुरू हुआ। पहले तो बहुत थोड़े से 5-10 भाई थे मधुबन में। हम जब आए हैं तो 25 भाई थे, 25 थे, अभी 2000 के ऊपर हैं। और वो सब कर्मणा सेवाएं ही करते थे। कोई भी ज्ञान योग की सेवाएं इतनी नहीं थी और मजदूर न होने के कारण 2 बजे से सुबह अमृत वेले से हम भाइयों की सेवा लगती थी, कर्मणा सेवा। पानी गर्म करना, पानी सबके कमरों में पहुंचाना, फिर उसके बाद तैयार होके धोबी घाट करना, फिर रोटियां बनाना, भोजन बनाना, बहुत सारे कार्य ऐसे, सब कर्मणा सेवा। लेकिन दीदी दादी ने बहुत प्यार से पाला, माता पिता की तरह से काम किया। तो अच्छी अच्छी टोली भी खिलाई, धोबी घाट करते थे तो इतना अच्छा अच्छा हलवा बन करके मिलता था। स्थूल पालना भी दी, लेकिन दीदी का विशेष अटेंशन, दीदी मनमोहिनी को बहुत रहता था कि जो भी आए मधुबन में उन सब का ध्यान पढ़ाई पर जरूर होना चाहिए, क्योंकि काम तो कोई भी कर सकता है। नौकरी करने वाले भी, सर्वेंट भी काम कर लेंगे, लेकिन उनके करने में और बाबा के बच्चों के करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इसलिए दीदी दादी कहती थी कि सेवा करने के लिए केवल भोजन किया, सेवा किया, ड्रेस लिया, कोई नौकर थोड़ी हो, इसके लिए थोड़ी यहां आए हो। बाबा के घर में आए हो तो ज्ञान और योग पर विशेष अटेंशन दो। अमृत वेले का योग मिस नहीं होना चाहिए। अमृत वेले पर बहुत ध्यान खिंचवाती थी, क्योंकि दीदी खुद योग कराती थी, आयु बड़ी थी। 4 बजे स्नान करके और बिल्कुल ऐसे बैठ जाना, इसलिए हाल था केवल एक छोटा सा, और उसमें कुर्सी एक भी नहीं थी पूरे हाल में, सब पट। तो हम सब जमीन पर पट पर बैठते थे लाइन में ऐसे, और दीदी खुद योग कराती। फिर दीदी जब योग करा के छुट्टी करती तो उसके बाद स्नान वगैरह तैयार होके दादी जी मुरली सुनाती थी, क्योंकि दीदी ने लौकिक पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन बहुत क्लेवर, बहुत बुद्धिमान थी, तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि। बाबा ने ही उनको पढ़ना सिखा दिया, मुरली के प्रश्न उत्तर कैसे निकालना, मुरली का एसेंस क्या है। दादी जी मुरली सुनाती थी और दीदी नंबर 1 स्टूडेंट, पहले आगे आगे बैठना और सब प्रश्नों को नोट करना, और फिर जब मुरली पूरी हो जाती तो दीदी कहती अभी हम सब बैठो, और दीदी मुंह घुमा लेती है ऐसे और फिर प्रश्न पूछती। और प्रश्नों को भी बहुत रमणीक रीति से, छोटे छोटे प्रश्न, कोई जवाब याद रहता कोई नहीं रहता, तो कहती है जो जवाब देगा उसको डबल टोली मिलेगी और जो नहीं देगा उसकी टोली बंद। टोली मिलती थी ना मुरली क्लास के बाद। तो दीदी दादी बहुत चिटचैट करती थी, एक परिवार की फीलिंग थी, क्योंकि और कोई तो सेवा इतनी थी नहीं। अब 50-60 अगर पार्टी आ गई तो हम लोग अधिक से अधिक 100 हो गए, और उसमें भी लगता था एक बहुत बड़ा ग्रुप है, कैसे इनको सुलाएंगे, कैसे इनको पानी पहुंचाएंगे, कैसे इनके लिए भोजन बनाएंगे, बहुत सोचना पड़ता था। लेकिन दीदी दादी के अंदर ये रहता था कि अगर हमको और बढ़ाना है, और लोगों को लाना है, बुलाना है बाबा के घर, तो उनके लिए रहने की व्यवस्था चाहिए। तो 74 में पहले क्लास का विस्तार किया, मेडिटेशन हॉल बनवाया पांडव भवन में। पहले पहले हमारे बाद जब हम आ गए 72 में समर्पित हुए, तो सबसे पहले बना, एक बना योग भवन, अभी जो ज्ञान विज्ञान भवन के पास में पांडव भवन के नजदीक में है, 12 लोगों के रहने की व्यवस्था, एक भवन बनाया 72 में। फिर 73 में शुरू किया, और 74 में बन करके मेडिटेशन हॉल तैयार हुआ। मेडिटेशन हॉल ऐसे लगे कि बहुत बड़ा हॉल बन गया, क्योंकि उसमें 500-600 लोग बैठ सकते थे, 400 लोग अच्छी तरह से बैठते हैं, लेकिन पट थी ना जमीन में, कुर्सी नहीं थी, इसलिए 400-500 बैठ जाते थे। कोई इतना बड़ा हॉल बन गया, लेकिन वो भी छोटा पड़ा, और इसके कारण स्टाफ बढ़ता गया। जब संख्या बढ़ी, स्थान बढ़े, मकान बढ़ने लगे, तो भाइयों की भी जरूरत पड़ी। यंग बहनें जो थी, कुमारियां विशेष करके, बाबा उनको मधुबन में नहीं रखता था, कहता था तुम बच्ची जाओ सेंटर खोलो। तो जितनी दादियां हम कहते हैं बड़ी बहनों को, सिंधी में दादी कहते हैं, दादी माना ग्रैंड मदर नहीं, दादी माना बड़ी बहन। सिंधी में दादा को, बड़े भाई को दादा कहते हैं और बड़ी बहन को दादी कहते हैं। ऐसे लोग के तरफ ईस्टर्न में बड़ी बहन को दीदी कहते हैं और बड़े भाई को भैया कहते हैं। तो दीदी दादी की जोड़ी बनी, और इस जोड़ी ने इतना अच्छी तरह से सबकी पालना की ज्ञान और योग से, हम लोगों के फाउंडेशन को इतना मजबूत करना चाहा कि कुछ भी हो, कितनी भी आप कर्मणा सेवाएं करें, लेकिन अपना ज्ञान योग का चार्ट जरूर बनाना है। म्यूजियम हमारा बना हुआ था, आध्यात्मिक संग्रहालय बाबा ने बनवाया था, बाबा अव्यक्त हुए, उसकी लंबी कहानी है, वो नहीं सुनाता। लेकिन जब म्यूजियम बना तो बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने गुलजार दादी के द्वारा प्रवेश होकर बाबा ने ही म्यूजियम का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन हुआ 70 में, और उद्घाटन के बाद मधुबन में जो भी हम सब आए, तो सबकी ड्यूटी लगती थी शाम को 5 बजे से 8 बजे तक, क्योंकि तो शाम को बहुत भीड़ होती, बहुत पार्टियां आती, सनसेट छूटता और सब वहीं आ जाते। तो हम सबकी ड्यूटी थी कम से कम हरेक को 3 पार्टी तो समझानी है। तो शाम को हम सब जाते पांडव भवन से म्यूजियम में पैदल, और वहां पर पार्टी समझा के फिर 8:30 आते, उसके बाद भोजन करते। तो दीदी दादी का ये था कि सबकी बुद्धि में ज्ञान चलना चाहिए, और मुरली एक दिन भी मिस नहीं होनी चाहिए। मुरली भी बहुत वैरायटी रूप से पढ़नी और लिखनी है। तो जब हम आए तो हमने टाइप सीखने की इच्छा बताई, मुझे टाइप सीखना है। तो बोली टाइप सीखने के लिए तो पहले सिंधी सीखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी लिखत है, जो भी लिपि है हिंदी भाषा, लेकिन लिपि सिंधी है, राइटिंग ऐसे उर्दू जैसी। तो दादा विश्व रतन ने हमें सिंधी पढ़ना लिखना सिखाया, और एक भाई थे उन्होंने हमें टाइप भी सिखाई। लेकिन दीदी की राइटिंग पढ़ने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि दीदी पढ़ी नहीं थी, स्कूल की तो अपनी शॉर्टहैंड थी उनकी, जो उनको शब्द जैसे आते, जैसे लक्ष्मी नारायण लिखना हो तो सिंधी हिंदी में ना इंग्लिश में नहीं लिखती, एल और एन लिख देती। सृष्टि चक्र लिखना हो तो एस और सी लिख देती, ऐसे उनकी अपनी शॉर्टहैंड थी। तो दीदी की राइटिंग सीखने में मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि दीदी कहती थी तुम टाइप सीख गए हो, तुम जाओ प्रश्न उत्तर टाइप करके आओ। अब दीदी डायरी देती मुझे पढ़ना नहीं आता, सबकी राइटिंग मैं पढ़ लेता, यीशु दादी की राइटिंग, गुलजार दादी की राइटिंग, प्रकाशमयी दादी की, सबकी पढ़ता, लेकिन दीदी की राइटिंग नहीं पढ़ पाता, क्योंकि अलग ढंग से लिखती थी। फिर भी दादियां जो जब पढ़ती थी उनको ले आता थे, दादियां बड़ी सरल, बहुत मिलनसार, किसी को कोई सेवा दो कभी ना नहीं करती, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। तो हम तो दादियों का हाथ पकड़ के ऑफिस में ले आते थे, दादी चलो चलो मुझे प्रश्न उत्तर टाइप करा दो, दीदी की राइटिंग मैं नहीं पढ़ पाता हूं। तो आ जाती थी, घंटे दो घंटे बैठती थी, पढ़ के सुना देती थी। तो मेरा बचपन ऐसे बीता, जो कर्मणा सेवाएं सब किया, धोबी घाट भी किया, पानी भी पहुंचाया, लेकिन साथ साथ टाइप सीख लिया, सिंधी सीख लिया, और इसके कारण बड़ों के समीप आने का चांस मिल गया। उनके अंदर क्या है, प्रश्न उत्तर कैसे कहाँ भेजने हैं, पत्र कैसे आते हैं, उनका जवाब कैसे देना है। तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी ने एक सेवा संभाली थी कि सभी पत्र जैसे बाबा जवाब देते हैं ऐसे दीदी देगी सब पत्रों का उत्तर, और उसमें हम सबको सहयोगी बना लिया कि जाओ प्रश्न उत्तर टाइप करके आओ। पत्रों का उत्तर तो केवल दो चार लाइन में देना, लेकिन उसको ज्ञान खजाना मिलना चाहिए, क्योंकि ज्ञान खजाना ही सबकी रूहानी पालना है। प्यार देना, टोली खिलाना, मिलना जुलना, ये तो परिवार है, लेकिन परिवार के साथ साथ हमारी स्टूडेंट लाइफ है, स्टडी जरूरी है, क्योंकि स्टडी के बिना हमारा चिंतन चेंज नहीं होगा, हमारे अंदर धारणाएं नहीं होंगी, और योग भी तब लगता है जब ज्ञान बुद्धि में बैठा है। इसलिए दीदी दादी का ध्यान पढ़ाई पर बहुत रहता था, मुरली एक दिन भी मिस न करें। और अमृत वेले मान लो हम लोग अगर मिस कर दें, प्यार की बताऊं पालना कैसी थी, बीच में उठ जाते ना योग में कभी कभी, और हम तो सब छोटे छोटे तो थे, खिलौने जैसे, पता ही नहीं था, वैल्यू नहीं थी पढ़ाई की। तो 15 मिनट योग किया, बीच में उठ गए, आए कहीं नहीं योग लगा तो ऐसे सो गए। तो दीदी का एक प्रश्न था, एक दिन मेरे को बुलाया कमरे में, कहती है तुम योग कैसे करता है, योग कैसे करता है। हमने कहा पता नहीं, कुछ नोट किया होगा, कहीं झुटका खा रहा होगा। तो हमने बोला जैसे सब करते हैं ऐसे मैं करता हूं। तो बोली सब कैसे करते हैं। तो मैं चुप हो गया, मैं क्या जवाब दूं। कहती है भैया योग कैसे करना मैं बताती हूं, गोपी बन के योग करना, उद्धव बन के योग नहीं करो। अब मुझे पता नहीं थी कहानी है, भागवत की कहानी है, उद्धव एक थे जो बहुत बुद्धिमान थे, बहुत दिमाग था, और भगवान के प्रति वो बहुत ऊंची नजर रखते, बहुत भावना ऊंची थी। तो गोपियां तो भगवान के साथ खेलती थी, डांस करती थी, मटकी तोड़ती थी, तोड़वाती थी, कभी कभी मान देती थी कृष्ण को, कृष्ण को ही भगवान मानते ना भारत में। तो भागवत के अंदर आता था कि गोपियां जो है डांस करती हैं, खेल पाल करती हैं, और उद्धव कहता रही इनको पता नहीं किसके साथ नाच रही हैं, किसको पकड़ रही हैं, किसको रस्सी में बांध रही हैं। वो सूखा ज्ञानी और वो बिल्कुल भावना वाली गोपियां। तो दीदी कहे तुम गोपी बन के भगवान को याद करो, उद्धव बन के नहीं करो, दिल से याद करो, दिमाग से नहीं सिर्फ करो। कई लोग दिमाग लगाते हैं ना, आत्मा हूं, परमात्मा परमधाम में है, वो लाइट है, वो ज्योति है, ज्वालामुखी योग करेंगे तो उसे लाइट आ रही है। दीदी कहती है क्या है आखिर, बाबा को याद करना, प्यार करना, यही तो योग है, इसलिए प्यार से याद किया करो। तो पहले पहले हमको दीदी ने योग सिखाया। अरे इतनी अच्छी बाबा ने जीवन बनाई, इतना ऊंचा पद दिया, पढ़ाया लिखाया होशियार किया, तो ऐसा प्यार कहां से बाबा निकाल लिया, किस कीचड़ में पड़े थे, कितना विकारों के अंदर डूबे हुए थे। तो ऐसे ऐसे बाबा से बातें करो और बाबा के प्यार में खो जाओ। तो दीदी खुद भी गोपिका थी, योग करते करते आंसू निकल आते थे, प्यार में समा जाती थी। तो हम सबको भी पहली शिक्षा यही मिली कि गोपी बन के योग करो, दिल से बाबा को प्यार करो, सिर्फ दिमाग से नहीं करो। फिर दूसरी शिक्षा दिया, बहुत शिक्षाएं मिली प्यार की, पालना तो यही है वास्तव में, भोजन खिला दिया, टोली दे दिया, वो पालना नहीं गए, वो तो परिवार है। तो दूसरी शिक्षा दिया, यहां तुम आए हो ना मधुबन में, संग की संभाल करना। तो मेरा प्रश्न उठ गया, संग तो बाहर खराब होता है, यहां किसका संग खराब है। तो दीदी कहती अच्छा तुम सोचता है यहां सबका संग अच्छा है। जो ज्ञान योग की बातों में इंटरेस्ट नहीं रखते, जो अमृत वेले नहीं उठते, जो पढ़ाई नहीं करते, केवल सेवा 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 सदा सेवा करते रहते, या फिर किसी की ग्लानी करते, परचिंतन करते, परदर्शन करते, अगर उनके संग में बैठोगे तो उनका रंग लगेगा। इसलिए उनका ही संग करो जिनके अंदर ज्ञान योग की रुचि है। जो मुरली रोज पढ़ते सुनते हैं, जिनका ध्यान है अपने ऊपर कि हम बाबा के घर में किस लिए आए हैं, तो ऐसे लोगों के संग उठोगे बैठोगे तो आपका भला है, कल्याण है। और अगर कोई कमजोर का संग कर लिया, जिसका जरा भी अपने पर ध्यान नहीं रहता, उन्नति पर, सेवा किया, सोया खाया, ऐसे के संग में नहीं जाना। तो दीदी ने पहले दूसरी शिक्षा दिया, तीसरी एक शिक्षा बड़ी अच्छी दिया, वो आप सब नोट करना, सबके लिए ये सब शिक्षाएं हैं, क्योंकि दीदी प्राइवेट हमारी टीचर बनी है, प्राइवेट टीचर, ट्यूशन देती थी। तो तीसरी शिक्षा दिया, तुम अपने को सुधारना चाहता है ना, सुधारने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, केवल मुरली सुन लिया, क्लास कर लिया, योग कर लिया, इससे कुछ नहीं सुधरता, कोई कितनी भी क्लासेस सुन लो। अगर अपने आप को सुधारना है तो अपने टीचर खुद बनो, स्वयं को पढ़ाओ, स्वयं से बातें करो, स्वयं को टीच करो। तो दीदी ने हमें स्वयं का टीचर कैसे बनना वो सिखाया। कैसे टीचर बनना, एकांत में जाओ, अपने से पूछो, बाबा आपने मुझे इतने सारे लोगों में से 800 करोड़ लोग, उसमें से हमको क्यों चुना आपने, मेरी कौन सी विशेषता आपने देखी जो अपना बना लिया, क्या हमने बहुत भक्ति की है, आप तो भक्ति का फल देने के लिए आते हो ना, तो जरूर हमने कोई पुरानी पुरानी द्वापर युग की भक्ति की होगी, इस जन्म तो हमने कुछ नहीं किया। ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करो और अपने को बताओ कि ये संस्कार ये देवताओं का थोड़ी होगा, देवताएं थोड़ी कभी गुस्सा करते होंगे, देवताएं थोड़ी आसक्त होंगे ये खाऊं ये खाऊं ये इकट्ठा करूं, और हमें देवता बनना है, हम भगवान के घर में देवता बनने की पढ़ाई पढ़ने आए हैं, वो हमारा टीचर है, वो हमें पढ़ा रहा है, तो क्या मेरे अंदर देवताई लक्षण है? मेरा चलना, मेरा बोलना, मेरा देखना, वो रॉयल्टी है, वो पर्सनैलिटी है, या लक्ष्य बड़ा ऊंचा है, लक्षण कोई नहीं? नहीं है तो अपने अंदर धारण करने के लिए अपने से बातें करो। अगर कोई कहेगा तो आपको खराब लगेगा, कहने से कोई सुधरता नहीं है। लेकिन अगर सुधारना है अपने आप को तो अपने आप से बातें करो, अपने को पढ़ाओ कि हमें देवता बनना है, संगम युग पर हमें फरिश्ता बनना है और भविष्य में देवता बनना है। ये हमारी पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है। और वो लक्षण मैंने अपने जीवन में कितनी परसेंट में धारण किए? जिस दिन से मैं बाबा का बच्चा बना उस दिन से अभी तक मेरे संस्कारों में कितना परिवर्तन आया। काम विकार का कड़ा संस्कार, क्रोध तो हर एक के अंदर भरा हुआ है, लोभ ऐसा है जो ये खाऊं ये चाहिए, मोह सूक्ष्म अटैचमेंट कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, और थोड़ा सा भी कुछ करते हैं कोई विशेषता है तो अहम भाव, अहंकार। तो दीदी पता कैसे इसका विश्लेषण करती थी? कहती थी ये काम विकार सताता है, पता नहीं चलता, अंदर अंदर परेशान करता है। क्रोध विकार जलाता है अंदर अंदर जलता है व्यक्ति। लोभ विकार भटकाता है ऐसे ऐसे चारों तरफ, और मुंह जो है फंसाता है, और अहंकार ऊपर से लटका देता है, उल्टा लटका देता है, मेरे जैसा कोई नहीं। इनको बहुत सूक्ष्म रीति से चेक करो, और चेक करो, चेंज करो, दिल शिकस्त नहीं हो जाओ, निराश उदास नहीं हो जाओ, क्योंकि ये सब माया की देन थी। माया के राज्य में सब संस्कार आ गए। क्यों आ गए, कैसे आ गए, अब क्या करूं? दीदी कहती कभी अपने आप से उदास नहीं होना, भगवान हमारा टीचर है, वो हमें पढ़ाएगा, वो हमें सिखाएगा, वो हमारा साथी है, उसको साथ लो और हिम्मत का कदम रखो, संस्कार चेंज हो जाएंगे। कहने से नहीं चेंज होंगे, सुनने से नहीं होंगे। तो दीदी ने ये बहुत महीन शिक्षाएं हम बच्चों को दी, और हमारा तो रोज मिलना जुलना, एक दिन भी ऐसा नहीं जो हम न बैठे दीदी के पास, और कुछ न कुछ कान में भू भू सिखाती थी। फिर दीदी जब अव्यक्त हुई तो दादी सारी जवाबदारी आई दादी के ऊपर, क्योंकि जानकी दादी को बाबा ने कहा कि जानकी दादी को तो विदेश में ही रहना है, उनको लंदन नहीं छोड़ना। दादी के साथ ये सब साथी हैं, चंद्रमणि दादी को बुलाया, मनोहरिंद्र दादी को बुलाया, संतमणि दादी को बुलाया, ये तीन चार दादियां दादी को सहयोग में मधुबन में रहने लगी। लेकिन वो जो अंदर की इंटरनल कारोबार थी, पत्र पढ़ना, पत्रों का जवाब देना, वो हम तो सीखे थे दीदी के साथ। तो दादी ने पूरी जवाबदारी मेरे को दे दी, तुम संभालो। 83 में दीदी के अव्यक्त होने के बाद अब इतनी पोस्ट आने लगी, क्यों विस्तार हुआ सेंटर्स का, कोई कुछ लिख रहा है, कोई पत्र भेज रहा है, तो सारा पत्रों को पढ़ना, उनके जवाब देना, तो ये सेवा मुझे सौंप दिया दादी ने। लेकिन कई ऐसी बातें होती थी जिसका मैं क्या उत्तर दूं, संस्था का जो मुख्य हेड है वही दे सकता है। तो दादी मुझे रोज अपने पास बुला लेती थी, 4 बजे शाम को कमरे में बुला लेती, 1.5 घंटे में सब पत्रों के उत्तर दे देती, सुनाओ क्या लिखा है, क्या इसकी बात। तो मैं सुनाता जाता और दादी अपने अंदर नोट करती, और जब पूरे सुन लेती तो एक साथ ऐसे आंख बंद कर देती और लिखाना शुरू कर देती, नाम सहित, स्थान, नाम, क्या प्रॉब्लम है, क्या कहना है उनको, 10-15 पत्र तो लिखा देती 1.5 घंटे में। कहती अभी जाओ इसको टाइप करो और उसमें बाबा की कोई ना कोई बातें लिखो और भेज दो। तो पत्रों की सेवा हमें 83 में टोटल यज्ञ के सारी जवाबदारी मिली। मुरली के साथ साथ। तो ऐसे करते दीदी दादी की बहुत पालना मिली। दादी की तीन विशेषताएं दादी की भी सुना देता हूं, क्योंकि दादी भी शिक्षा देने में नंबर वन थी। एक बार मैं शरीर से बीमार हो गया, काफी बीमार हो गया। बीमार ऐसे हुआ कि बरसात के दिन थे, मैं घूमने गया था नक्की लेक पर, और टाइप बहुत ज्यादा हो रही थी क्योंकि बढ़ती गई मुरलियां, 3000-4000 कापी हो गई। शुरू किया था 150 कापी से, और 10-12 साल में वो मुरली की संख्या बढ़ती गई, सेंटर्स खुलते गए। तो मैं सारा दिन टाइप करता था, 4 बार स्टेंसिल काटता, साइक्लो स्टाइल करता, करेक्शन करता, पूरा दिन अकेला ही लगा रहता। तो मैं जब घूमने गया ऐसे शाम को, तो बरसात में भीग गया, और भीग गया तो बहुत जोर से बुखार आ गया। बुखार आया तो कोई दवाई गलत मिली, इंग्लिश दवाई थी हाई पावर की, तो बुखार तो उतर गया एक दिन में, लेकिन सारा सर्कुलेशन नसों का, टांगों का, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया। अब मैं एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकूं, और एक चीज भी ऐसे फूल भी अगर कोई दे तो मैं दबा नहीं सकूं। उंगलियों में ताकत नहीं, हाथों में ताकत नहीं, पैरों में ताकत नहीं, लेकिन चेहरा बिल्कुल एकदम ठीक, मेमोरी बहुत अच्छी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं था। तो दादी ने देखा इसको हुआ क्या है कि सीढ़ी पर चढ़ता गिर जाता है, तो डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर तो हंसी में उड़ा दिया, क्योंकि उस समय पद यात्रा निकल रही थी, 84 में युवा पद यात्रा निकली थी, पूरे भारत के अंदर पैदल चले थे पूरे युवा यूथ। तो डॉक्टर कहता है इसको यात्रा में नहीं जाना, इसलिए बहाना करता है, इसको कुछ नहीं हुआ है। दादी कहती ऐसा कैसे होगा, दादी नहीं मानी, डॉक्टर को कहती नहीं गलत है, इसको आबू रोड भेज दो। अब आबू रोड में संगम हुआ नहीं था, क्योंकि यहां बहुत ठंडी थी, बरसात थी। तो जब मैं आबू रोड गया तो वो डॉक्टर वहां का आया, उसने देखा कि अरे ये तो कभी उठ ही नहीं सकता बिस्तर से, तो पोलियो हो गया। तो उसने इंजेक्शन पर देना इंजेक्शन शुरू कर दिया, 3-3, 4-4 इंजेक्शन कंट्रोल किया, और कंट्रोल करके फिर मुझे अहमदाबाद भेज दिया। पहले पालनपुर भेजा बड़े से हॉस्पिटल में, 8 दिन वहां रहा, फिर मुझे अहमदाबाद भेज दिया फिजियोथेरापी करने के लिए। तो दादी को एक संकल्प आया कि तन की बीमारी का प्रभाव मन पर नहीं आना चाहिए, इस पर बहुत ध्यान देती थी दादी। तन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मन पर अगर इफेक्ट आ गया तो कभी ठीक नहीं होगा। अगर मैं सोच लूं कि मैं बीमार हो गया तो बस बीमारी जाएगी नहीं, छोड़ेगी नहीं। तो दादी ने क्या किया, एक भाई थोड़ा अनन्य भाई थे अहमदाबाद में, तो उनकी ड्यूटी लगा दी कि इसको सोने नहीं देना बिस्तर पर, भले बीमार है, ज्ञान बहुत है बुद्धि में, इसको सवेरे सवेरे सब सेंटर्स पर क्लास कराने के लिए ले जाओ। और अहमदाबाद में उस समय 25 सेंटर थे अलग अलग, अभी तो बहुत हैं। तो मैं को सवेरे 6 बजे आके तैयार करके गाड़ी में बिठाता है इसे, और मुझे उतारता सेंटर पर, मैं वहां जाके बैठता और मैं क्लास कराता, वहीं नाश्ता करता, और उसके बाद एक चुंबक वाली दुकान पर ले जाता जहां चुंबक ऐसे ऐसे मैग्नेट लगा देते शरीर में सर्कुलेशन के लिए। वो भी 2-3 घंटा वहां गीत बजते, कोई बोलता नहीं, आवाज नहीं। तो योग और पढ़ाई, इस पर मेरे को बीमारी ने वरदान दे दिया। अकेला मिला, एकांत मिली, और बाबा ने एक सेवा बता दी, फिजियोथेरापी। जब वो डॉक्टर के पास जाते तो बाल दबाओ, कोई लोहे की मशीन ऐसे खींचो, बाबा ने कहा इसको आटा दे दो, आटा गूंदेगा। सवेरे सवेरे मेरे पास आटा आता था, मैं ऐसे ऐसे गूंदता था और उंगलियां चलने लगी। डॉक्टर ने बोला था कभी टाइप कर ही नहीं सकते हो, मैंने कहा बाबा ने मुझे टाइप सिखाई, मैं कभी छोड़ ही नहीं सकता इसको। तब मैं मधुबन आया, दादी गई मेरे पास मधुबन, वहां आई अहमदाबाद, और कहती अरे कुछ नहीं हुआ, चल तो मधुबन, ऐसे गले लगाया और प्यार किया, ऐसे सिर से ऊपर तक हाथ फेर दिया, चलो ठीक, कुछ नहीं है। बाबा ने फिजियोथेरापी सिखाई थी और दादी ने शक्ति दे दी, मैं मधुबन आया, टाइप करना फिर शुरू कर दिया। 3 दिन में मेरी स्पीड जितनी थी उससे हमने और आगे बढ़ा दी। उसके बाद फिर टाइप शुरू हो गया, फिर उसके बाद तो कंप्यूटर ये जा गया। तो ऐसे करके दीदी दादी की बहुत ऊंची पालना मिली। दादी का था तन का रोग का असर मन पर ना आए, कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना, निराश नहीं होना, बैठ जा, ऊंचे सम्मान में रहना और सबको सम्मान देना, सम्मान में रहो, अभिमान में नहीं। तो दूसरी शिक्षा थी सम्मान में रहना, सम्मान देना। और तीसरी दादी कहती थी बहुत बड़े दिल वाले दाता बनो, कोई भी सामने आए ऐसा नहीं है कि वो कुछ दे, मुझे देना है, मुझे देना है, दादी के संस्कारों में था। आप दोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे करके दादियों ने बहुत सारी सिखाई बातें, क्लास कराएंगे तो 2-4 घंटा हो जाएगा। ये भाई हमारे पास आ गया क्वेश्चन आंसर करने, ठीक है आप पूछो।
ओम शांति। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी ने, हमें दीदी और दादी जी ने इतनी प्यारी सी शिक्षाएं हमें उनको दी, वो हमारे साथ उन्होंने शेयर किया। मैं भी काफी टाइम से भाई साहब को सुनता हूँ, उनसे भी काफी कुछ सीखा है। लेकिन अभी जो कितना प्राउड फील हो रहा था है ना, हम ऐसे भाई जी के साथ बैठे हैं जो दादियों के बाप दादा के इतने करीब से उन्होंने पालने ली है, और आने वाले जो बाबा के बच्चे हैं उस समय में 57-100 लोग आते थे तो बड़ी पार्टी होती थी है ना, अभी 20,000-25,000 पीपल आते हैं। सो वहां से यहां तक कि उनकी इतनी जो लंबी जर्नी है ना, कितना हमें भाग्य है कि हम उनके साथ आज बैठे हैं। लेकिन साथ में भाई जी ने बहुत अच्छी प्यारी प्यारी बातें जो सुनाई, उसके बारे में मैं कुछ क्वेश्चंस हम सभी की ओर से पूछना चाहूंगा कि हम सभी जो जानते हैं कि जैसे भाई जी ने भी कहा पहले कि हम सभी की जान मुरली है, तो क्योंकि परमात्मा के साथ का अनुभव जो हम करते हैं या उनसे जो मिलते हैं, ज्ञान और योग ये दो ही चीजें हैं, और ज्ञान हमें मिलता है उस मुरली से। तो मुरली के हिसाब में, मुरली के बारे में मुझे ये कहना है भाई जी, इतनी आपको बड़ी ऊंची जो सेवा मिली है, जो कि आज यज्ञ में सबसे पुराने दादी हो दीदी हो या आज बाबा का बना हुआ बच्चा हो, हर एक के लिए मुरली सेम है ना, सबके लिए शिक्षा बाबा की सेम है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा भाई जी कि जो 60s-70s का जो समय था, बाबा खुद जब मुरली चलाते थे, मैंने सुना वो काफी बड़ी मुरलियां होती थी, आज तो 3-3.5 पेज की मुरली हमारे पास आती है, तो उसके पीछे आपका बहुत सारा मनन चिंतन, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, तो ये कैसे आप मैनेज करते हैं, कैसे ये तय करते हैं कि क्या पॉइंट्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए, उसके बारे में थोड़ा विचार हमारे बीच में रखिए।
ऐसा है कि जब सेवाओं की वृद्धि हुई और सेंटर्स पर अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे आने लगे, तो एक स्टडी का रूप हो, और स्टडी के लिए अधिक से अधिक कोई क्लास 45 मिनट होता है, उससे ज्यादा बोलो तो ऊपर से चला जाता है, अधिक से अधिक 1 घंटा। तो दादियों ने सेट किया, हमारी दादी प्रकाश मणि जी मुरली सुनाती थी और रोज मुरली के बाद मुझे अपने पास बुलाती थी कि देखो राजू, अगर बहुत लंबी मुरली जाती है तो क्लास में सुनने वाले तो टाइम पर उठ जाएंगे, टीचर क्या करेगी, क्योंकि उनके पास टाइम ही 45 मिनट 1 घंटे का होता है। तो हमको 3-3.5 पेज की मुरली को ही सेट करना है, पॉइंट छूटना कुछ नहीं चाहिए, जो मेन पॉइंट्स हैं वो सब आनी चाहिए, और एक नहीं तो दूसरे दिन आ जाएंगे। लेकिन कभी भी इतना बड़ा लंबा लंबा नहीं भेजना जो लोग उसे बोर हो जाएं, तो सिलेक्शन खुद दादी कर देती थी, ब्रैकेट लगा देती थी कि ये बात नहीं भेजना, ये बात भेजो, ये भेजो, ये भेजो। तो ऐसे करके दादी प्रकाश मणि जी ने, क्योंकि बाबा के अव्यक्त होने के बाद मुरली की टोटल सेवा की जवाबदारी दादी की थी, दादी प्रकाश मणि सुनाती थी और उसमें क्या करना है कैसे करना है वो फिर जब मैंने डिपार्टमेंट संभाली 76 में पूरी डिपार्टमेंट में मुझे मिली थी, 73 में मैंने सीखा। और उसके बाद बाबा के पास तो बैठने का अव्यक्त बाबा के साथ तो डेली हो गया, क्योंकि पूरी रात बाबा आते थे, कोई लिखता ही नहीं था, टेप मशीन तो थी नहीं, ये तो वीडियो वगैरह तो होती नहीं थी, तो मैं पूरी रात बाबा के पास अव्यक्त बाबा के पास लिखता था और लिखने के दूसरे दिन क्लास में सबको सुनाता था। फिर दादियां कहती थी ये बातें सबको भेजो, ये सेंटर्स पर भेजो। तो ऐसे अव्यक्त मुरलियां बनाई और साकार मुरलियां जो जरूरी समझी उतनी दादी यीशु दादी हमको मदद करती थी। पहले यीशु दादी उसको फेयर करके हमको देती थी और अगर उसमें दादी कहती इसको ऐसे भेजो, इसमें प्रश्न उत्तर लिखो, इसका सार लिखो, इसमें धारणा सार लिखो, तो इसमें सब स्टूडेंट की तरह लोग स्टडी करें, इसलिए दादी ने वो सब शुरू कराया। और वही उन्होंने जैसा शुरू कराया वैसा ही सिस्टम अभी तक भी वही मुरली में चलता है।
तो दादी जी और दीदियों ने ये आगे बढ़ाया प्रोसेस। तो कई आत्माओं का जो अभी नए आते हैं उनका ये एक क्वेश्चन रहता है कहीं कि हम इतना लेट ज्ञान में ड्रामा अनुसार आए हैं, तो वो जो बाबा की रात रात भर जैसे आपने अभी बोला कि मुरली चलती थी, तो क्या हम कुछ उसमें से मिस आउट कर रहे हैं? क्योंकि परमात्मा स्वयं गॉड महावाक्य सुना रहे हैं, तो इतनी लंबी मुरली जो पहले चलती थी, तो ऐसा कुछ है या आपका विचार क्या है इसके ऊपर कि जैसे कभी कोई ऐसा समझते कि हमें कुछ तो हम मिस तो नहीं कर रहे, हमें कुछ मिल नहीं रहा या हम तक नहीं पहुंच रहा, ऐसा कभी सोच विचार चलता है तो आपका?
ऐसा है कि बाबा के बच्चों का कभी कुछ मिस नहीं हो सकता। बाबा हर एक बच्चे को कितना देना चाहता है, क्योंकि हर चीज का सार होता है, एसेंस होता है, विस्तार अलग चीज है लेकिन उसका एसेंस आपको मिल रहा है। कहते हैं ना बने बनाए पर हम आए हैं, अभी हमको बनाना नहीं है। तो भाग्यवान तो हम हुए, इस समय के बच्चे हो गए जिनको कोई चीज बनानी नहीं है, सब कुछ बना बनाया दे रहे हैं। बाबा ने इतना अच्छा करके दिया, पहले तो कितनी मेहनत थी, कितनी बातें सुननी पड़ती थी, वातावरण ऐसा था, लोग विरोध करते थे, अभी तो हर प्रकार से सुविधाएं इतनी सब बाबा ने दे दी, साधन दे दिए। हम लोगों को एक मुरली किसी सेंटर को भेजने के लिए कितनी लिखा पढ़ी करनी पड़ी थी, कहीं गलत स्थान पर न जाए, गलत हाथ में न चली जाए, उसे डिसर्विस न हो जाए। हाथ तो मोबाइल के अंदर, सब के अंदर, ज्ञानी अज्ञानी सबके पास मुरली है। तो ये बने बनाए साधनों में आप आए हैं, सब कुछ मिल रहा है, ऐसे कोई भी चीज मिस नहीं हो रही और अच्छी तरह से डिफाइन होकर के मिल रही है। मैं समझता हूं अभी ये कभी नहीं सोचना, और हमें ये ध्यान रहता है कि जो कुछ अच्छी बातें, यहां तक कराची की अच्छी बातें जो हमको पढ़ने को मिली, हम पढ़ते हैं, तो हम सब ब्राह्मणों को जरूर भेजें। और कहीं ना कहीं मुरली में जैसे मम्मा डे पर या कोई दिन वो मुरली को मैं भेजता हूं कभी कभी, क्योंकि बहुत कम मिला मैटर, वहां का मैटर हमको मिला नहीं, बाबा ने लाने नहीं दिया था, वहां से ही रखवा दिया था। तो जो दादियों की डायरी मिली उसमें भी जो हमें अच्छी बातें मिलती हैं वो हमारे ब्राह्मण परिवार को मिले, ये हमारा लक्ष्य रहता है, और कहीं ना कहीं मैं भेजता हूं।
कितनी अच्छी बात कही भाई जी ने कि जो बाबा को, जिस बच्चे को क्या देना है उस समय पर उनको जितना चाहिए उतने पालना बाबा जरूर देते हैं। तो आपने जब दीदियों का आपके साथ का अनुभव जब सुना रहे थे कि दीदी का ये लगन रहती थी कि खुद अपना आप टीचर बनो, आपने एक ये जो बात कही, और ये हम औरों से भी सुनते हैं कि हमें अपना अपना टीचर बनना चाहिए, कुछ को चेक करना चाहिए। आपके जीवन का कोई एक प्रैक्टिकल अनुभव कि आपने कैसे आप अपने अपना अपना खुद का टीचर आप बने और ये परिवर्तन आपके जीवन में आया, ऐसा कोई प्रैक्टिकल अनुभव आप सुनाएंगे तो हम उसको फॉलो कर पाए।
ऐसा है कि संस्कार बहुत कड़े हैं और किसी न किसी रूप में वो छिपे हुए हैं, ऐसे जल्दी खत्म नहीं होते। इसको तो जगदीश भाई बहुत अच्छी तरह से एक रमणीक क्लास कराते थे कि संस्कार ऐसे हैं जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती, सीधी नहीं होती। वो ब्राह्मण बनने के बाद भी मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन संस्कार इतनी जल्दी चेंज नहीं होते। गुस्से का संस्कार अगर उस समय का है दुनिया के हिसाब से, वो भी कभी न कभी निकल आता है, क्योंकि हमने अच्छे वातावरण में, अच्छे संग में, अच्छे भोजन में उस संस्कार को दबाया है, उसको जलाया और गलाया नहीं है। जैसे बीज है आपके पास, अगर उस बीज को आप छिपा करके किसी मिट्टी में, किसी घड़े में रख दो, कहो ये तो अंकुरित होगा ही नहीं, नहीं होगा, क्योंकि छिपा हुआ रखा है। लेकिन जब वो बाहर निकलेगा, उसको मिट्टी, हवा, पानी मिलेगा, तो उसमें से पौधा निकल आएगा, अंकुर निकल आएगा। बाबा कहते हैं ऐसे संस्कार तुमने अंदर छिपा के अगर रखे हैं तो कभी भी वो प्रकट हो सकते हैं। तो हम सबके अंदर पांचों विकारों के संस्कार तो भरे हुए हैं, भले इस जन्म में हमने कुछ नहीं किया, पिछले जन्मों में तो सब किया, संस्कारों में भरा है। जैसे मैंने आपको छोटी बात बताता हूं, जब मेरे को डिपार्टमेंट मिली और मेरे को ऑफिस और कमरा एक साथ मिला 97 में, कमरा अंदर ऑफिस बाहर, और ऑफिस में फोटोकॉपी, कंप्यूटर ये सब थे, और सेवा साथी थे लेकिन वो दूसरे स्थान पर रहते थे। तो जब मैं सो जाऊं, जब मैं गहरी नींद में हूं, कोई ना कोई आके जगा दे, भाई जी बहुत जरूरी है, अभी फोटोकॉपी चाहिए, है एक पेज ही लेकिन तुरंत चाहिए। तो मैं माइंड से डिस्टर्ब हो गया, बहुत ज्यादा वो हो गया, चिड़चिड़ापन कहते हैं, कर देता था लेकिन एकदम खुशी गायब हो गई, एकदम ऐसे ले गए क्या यहां सुला दिया, यहीं पर काम करो, यहां सो, तो 24 घंटा ही मैं ड्यूटी पर हूं क्या, अपने लिए रेस्ट ही नहीं। तो थोड़ा अंदर अंदर एकदम से ऐसे लगे कि मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूं, कोई ठीक जवाब नहीं देता किसी को। तो मैंने एक दिन एकांत में जाके महसूस किया, तपस्या की, हमने कहा जब करके देना ही है और मुझे कहा गया है कि आपको ये कमरे में रहना है, तो मैं गुस्सा करके, चिड़चिड़ा होकर के, ठीक जवाब न दे करके फिर कर रहा हूं, ये तो ठीक नहीं। करना है तो प्यार से करना, नहीं तो नहीं करना। मैंने संकल्प किया और मैं थोड़े समय के बाद उस संस्कार को चेंज कर लिया। थोड़ी मेहनत लगी, थोड़ा समय लगा, लेकिन धीरे धीरे मुस्कराना, प्यार से बात करना, अच्छा है कोई बात नहीं, फिर सो लेंगे, कोई अच्छा नहीं। तो बाबा फिर मदद भी करता है जब संकल्प करते हैं। बाबा कहता है ना, हिम्मत का एक कदम आपका हजार गुना मदद बाप की। तो फिर स्थान चेंज किया, फिर शांतिवन बना, वहां चले गए, तो धीरे धीरे वो गुस्सा समाप्त हो गया। तो कोई भी संस्कार को चेंज करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, और उसके लिए दृढ़ता का संकल्प। तपस्या हमारी क्या है, हम एक टांग पर थोड़ी खड़े हो रहे हैं, कोई हम कोई त्याग तो कर नहीं रहे, लेकिन तपस्या माना दृढ़ता संपन्न संकल्प, तपस्या माना वैराग्य। अगर वैराग्य है बुराइयों से, विकारों से, और दृढ़ता है तो हम परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे कई अनुभव हैं।
बहुत ही अच्छा भाई जी ने एक उदाहरण दिया कि कैसे हमें अपने आप को चेक करना है, क्योंकि कहां हमें जहां भी सेवा मिली है, जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन हमारा विवेक अंदर से कहता है कि मैं कहां डिस्टर्ब हो रहा हूं या कहां पे अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं, तो उस समय हमें अपने आप को थोड़ा समय दे करके अपने आप से ही सीखना चाहिए। सीख तो बहुत सारे क्लासेस मुरलीज में मिलती है, लेकिन उसी सटीक जगह पे उसको कैसे यूज करें और कैसे अपने में बदलाव लाएं, भाई जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। भाई जी, जब आप दीदियों का, दादियों के उदाहरण या अनुभव सुना रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि मम्मा और बाबा ने जिनको बनाया उनके साथ आपने अंग संग रह करके जीवन बिताया है और इतना यहाँ तक पहुंचे हैं इस मुकाम तक। तो अभी जो हम नए बाबा के बच्चे आते हैं जिन्होंने दादियों को कईयों ने तो देखा भी नहीं है, तो वो जो एक फीलिंग आती है बीच में कि ड्रामा अनुसार हमारा अभी जो पार्ट है हमको तो वो सब नहीं मिला, तो वो वाला गैप कैसे भरे या कैसे हम अभी उन अनुभवों को फील करें। हाँ अभी दादियां आप जैसे दादा सभी वो एक्सपीरियंस सुनाते लेकिन वो आपके एक्सपीरियंस हैं, आपके वो अनुभव हैं, वो हम अपने जीवन में कैसे अनुभवों को फिर से फील करें या क्या उसके लिए हमारी स्थिति या मनस्थिति होनी चाहिए।
किसको किसको लगता है कि हमको भाग्य नहीं मिला? मुझे तो ये लगता है कि दादियां अव्यक्त होने के बाद, जैसे बाबा अव्यक्त होने के बाद बच्चों की पालना में अभी तक भी हाजिर हैं, ऐसे ही ये यज्ञ जिन्होंने स्थापन किया, जिन्होंने उसके लिए खून पसीना लगाया, इतनी मेहनत की, इतना बड़ा विस्तार किया, वो शरीर से भले नहीं है लेकिन उनकी सूक्ष्म सकास, उनकी छत्र छाया, उनका प्रेम, उनकी स्नेह भरी पालना का हर एक को अनुभव होता है। जो मधुबन में भी आता है वो यहां आने से ही उसको लगता है कि मुझे बहुत कुछ मिला, भले साकार में कोई न दे, स्थूल में कोई न दे, लेकिन सूक्ष्म पालना अव्यक्त वतन से बाबा करवा रहे हैं। दादियां भले नए पार्ट में भी चली गई हों लेकिन उनका जो संपूर्ण स्वरूप है वो बाबा के पास है, अव्यक्त वतन है, और अव्यक्त वतन हमारे ब्राह्मणों का ही असली घर है। सिर्फ ध्यान रखते हैं उस भासना को, उस पालना को अनुभव करने के लिए हम बाह्य चिंतन से, बुद्धि नहीं चलाओ ज्यादा, विवेक नहीं चलाओ, लेकिन यहां पर भावनाओं का यूज करो। जहां भावनाएं हैं उस भावना का फल भक्ति में भगवान देता है, और ये तो हमारा ज्ञान युक्त भावना है। ज्ञान युक्त भावना से अभी हमको देखो 20 साल हो गए, दादियां हर चीज मुझे गाइड करती थी। प्रकाशमय दादी ने फुल गाइड किया। दादी 2007 में अव्यक्त हुई, 2 साल पहले से ही उन्होंने हमें सौंप दिया, तुम संभालो, तुम बहुत अच्छा करते हो। आज 20 साल हो गए, कोई नहीं कहता। हम कहें दादियां नहीं है मैं क्यों करूं, मुझे थोड़ी आता है सब, मुझे कोई कहता ही नहीं है मैं क्यों करूं, अगर मैं नहीं करूं तो मुझे बाबा नींद नहीं करने देगा, मैं नहीं कहूं तो मुझे योग नहीं करने देगा, वो बैठा है मेरे ऊपर। और मुझे ये अनुभव होता है, भासना आती है, जब मैं जाता हूं बाबा के कमरे में जाऊं, जब एकांत में बैठूं तो ऐसे लगता है दादी मुझे कह रही है अभी तक तुमने ये नहीं लिखा, अभी तक तुमने नहीं भेजा, ये करो ये करो ये करो। जैसे जो साकार में हमको अनुभव होते थे, अभी थोड़ा सा बाबा के कमरे में बैठो, बाबा की तरफ देखो, दृष्टि लो, बाबा आप जिस भावना से बैठोगे आपकी भावना पूरी कर देगा, जिस दादी से मिलना चाहो मिला देगा, भावना चाहिए तो आप थोड़ा समय दो। साकार में कहीं नहीं जाओ, भले किसी भाई के पहने के पास नहीं जाओ, लेकिन साकार ब्रह्मा बाबा की जहां पर फोटो रखी है, कमरा बना है, बाबा के पास बैठो, बाबा मुझे दादी जानकी का थोड़ा तो अनुभव करा दो, गुलजार दादी का क्या रोल था, थोड़ा सा अनुभव करा दो, प्यार से बात करो। आपको बाबा की दृष्टि से दादी की दृष्टि मिलेगी, आपको प्यार मिलेगा, पालना मिलेगी, भासना मिलेगी, लेकिन भावनाएं रखना, केवल विवेक नहीं यूज करना, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो गलत नहीं हो सकता। जहां विवेक यूज करते हैं ना वहां पर ये अनुभव नहीं होते, लेकिन जहां भावनाएं हैं वहां पर जैसे वो हाजिर हो जाती। ये कई बार हमने अनुभव किया, कोई भी कार्य अगर मेरे से मिस हो रहा हो, मैं नहीं समझ पाया या नहीं कर रहा हूं, आज इतना सारा मुरली का सेवा चलती है। बाबा के समय, दादी के समय 7-8 लाख का परिवार, दादी प्रकाशमणि के समय 7 लाख का परिवार था। अव्यक्त होने के बाद, दादी के जाने के बाद आज 14 लाख से अधिक परिवार जुड़ गया, और सबकी पालना जो देने वाले साकार में थे दादी दे रही थी, जानकी दादी दे रही थी, गुलजार दादी दे रही थी, वो सब अव्यक्त हो गए। अब हम लोगों को आगे रखा है, निमित्त रखा है, कराने वाले तो वही है, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज कोई को भी देखो कहता है मुरली तो हमारे लिए आई, आज का जो अव्यक्त इशारा था वो हमारे लिए था, आज का वरदान हमारे लिए था, अब हमने थोड़ी आपके लिए दिया। भाई देने वाला कौन है? बाबा है ना। बाबा अपना काम अपने बच्चों से कराता है, लेकिन हम केवल ध्यान रखते हैं कि हम अपनी बुद्धि को यूज ना करें, ये बुद्धि यूज ना करें, बुद्धिमानों की बुद्धि इस बुद्धि को यूज करें, बस इतना अंतर है। मेरी अपनी बुद्धि अगर मेरी अपनी पढ़ाई होती, हो सकता उसमें मैं कुछ ऐड कर देता, मैं तो दुनिया पढ़ी नहीं, दुनिया देखी नहीं, न कॉलेज देखा है न यूनिवर्सिटी देखी है, लेकिन पूरे विश्व को जितना पढ़ाई का होमवर्क है मेरे द्वारा बाबा करा रहा है ना। वंडर, अगर वंडर देखो तो बहुत बड़ा वंडर है, नहीं देखो तो ठीक है। नहीं तो हमारे पास गोल्ड मेडलिस्ट भाई बैठे हुए हैं, हमसे कई गुना पढ़े लिखे डिग्री होल्डर हैं, और हमसे कोई पूछता आप कितना पढ़े हो, तो मैं यही कहता हूं मैं डबल बीए हूं, डबल एमए हूं। डबल बीए 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 बाबा है, डबल एमए 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 मम्मा है। बाबा और मम्मा हमारी पढ़ाई है, वही हमको पढ़ा रहे हैं, और वो कहते हैं जो इशारा करते हैं बाबा की याद में बैठता हूं, जो वरदान देना है लिख देता हूं, लिखता हूं बनाता हूं, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन जरा भी ये नहीं लगता मैं कर रहा हूं, बाबा कराओ, ये हाथ है आगे आ जाओ कराओ आकर के, आपके बच्चे आपको पालना देने, मेरी थोड़ी है कोई, हम तो इंस्ट्रूमेंट हैं। तो बाबा हमें यूज करे, उसके लिए हम बुद्धि को स्वच्छ रखें, वो कोई चीज मिक्स न करें, बस बाबा इसको यूज कर लेगा। तीन चीजें याद रखना, टचिंग देने वाला दे रहा है, बुद्धि स्वच्छ है कैच करेगी, और कैचिंग राइट है तो मुरली से या कहीं से भी मैच करेगी। जहां टचिंग है वहां कैचिंग होनी चाहिए, और कैचिंग है राइट है तो मुरली से मैच जरूर करेगी, कहीं ना कहीं से मैच करेगी। अगर मैच नहीं कर रही तो मनमत हो सकती है। तो मैं तीनों चीजें मिला के चल रहा हूं, मैच करती है बातें या नहीं मैच कर रही है, तो कहीं से फोन आ जाता है ये काम करना है, ये नहीं किया अभी आपने, तो ये बहुत अच्छी टचिंग है, बाबा कराने वाला करा रहा है।
कितनी अच्छी बात है कि डिग्री लौकिक डिग्री कोई नहीं है, लेकिन अब भाई साहब ने जो बोला कि वो कितनी बढ़िया डिग्री है कि बाबा के अभी जो बच्चे दुनिया में बने हैं, फॉरेनर्स हो इंडियन हो, बहुत पढ़े लिखे साइंटिस्ट हो, कितनी बड़ी बढ़िया डिग्री लगने वाले, लेकिन उनके लिए पास भी बाबा की वो मुरली ही है स्टडी करने के लिए, और वो भाई साहब उसके निमित्त हैं जो उनके द्वारा ये मुरली वहां तक पहुंचती। कितना बड़ा कार्य है, लेकिन कितना भाई साहब निर्माण है कि वो सिर्फ अपने आप को निमित्त समझते हैं, और ये जो टचिंग और कैचिंग पावर जो बाबा उन्होंने बोला और उसके साथ मैचिंग, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अभी हम सभी को यह अनुभव है कि रोज की मुरली कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आज मेरे जीवन में जो परिस्थिति है जिससे मैं गुजर रहा हूं, कहीं ना कहीं वो मुझे बहुत अच्छी सीख और उपराम बना करके चलने के लिए टचिंग दे रही है, या मेरे लिए है ऐसा पर्सनल सभी को लगता है जहां भी जिधर भी बाबा के बच्चे ये मुरली को सुन रहे हैं। लेकिन आप तो ये सब नहीं डिसाइड कर रहे हैं, मना आप तो सभी के संस्कारों को या परिस्थिति को नहीं परखते हैं, लेकिन फिर ये जो आप डेट चूज करते हैं कि ये वाली मुरली इस महीने में चलनी चाहिए, जैसे हम सुनते हैं कि 5 साल की मुरली रिपीट होती है, बहुत सारी ऐसी बातें हमने हिस्टोरिकल सुनी है, लेकिन ये कैसे मैच आप बिठाते हैं या कैसे ये सब चलता है कि ये समय की मुरली इस समय में चलनी चाहिए, ये कौन तय करता है या कैसे ये कार्य चलता है?
मुरली वास्तव में सीरियल वाइज ही चल रही है। जैसे अगर 67 की 68 की जो 5 साल की मुरली है, 62 के पहले की मुरलियों में बाबा ने ज्ञान को अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं किया था, अंगुष्ठाकार के रूप में ज्योतिर्लिंगम के रूप में बताते बताते बिंदु तक आया, और जब बिंदु स्पष्ट हुआ कि आत्मा का रूप ज्योति बिंदु है, बाबा का रूप ज्योति बिंदु है, फुल ज्ञान जब इमर्ज हुआ, माना स्पष्ट हो गया, तब बाबा ने ही कहा कि पुराना जो है वो पढ़ा हुआ जला दो, खत्म कर दो, उसको रखना नहीं है। बाबा ने खत्म कराया। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए तो सबके मन में था अभी क्या चलेगा, अभी कैसे मुरली चलेगी। तो बाबा ने 21 तारीख को जब आए, प्रवेश हुए गुलजार दादी में, तो बाबा ने कहा जो पिछला कार्ड है, जो रिफाइंड ज्ञान है, वो मुरलिया रिपीट करो, रिवाइज करो। तो वो रिपीटेशन करने के बाद 5 साल के बाद तो मुझे मिली, क्योंकि मैंने 76 में डिपार्टमेंट ली। तो 5-6 साल की जो मुरलियां चल रही थी वो पहले से हमने शुरू किया, जैसे फिर से रिपीट किया। तो रिपीट करने के समय ध्यान रखते हैं, साल बदला, मास वही रहा, तिथि बदली, तारीख तो बदलनी पड़ती है, तो तारीख केवल तारीख बदली, मास वही है, सन बदला। माना कि अगर उसको जब मैं पढ़ रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं ये मुरली बाबा कह रहे हैं आज गुरुवार है, और वो मुरली हमारी डेट के अनुसार मंगलवार को चल रही है, सेंटर पर जाएगी, तो मैं उसको चेंज कर लेता हूं कि नहीं गुरुवार को ही ये चलनी चाहिए। अच्छा आज होली है, आज दिवाली है, बाबा मुरली के अंदर उसका रेफरेंस कर रहे हैं। तो अगर होली का त्योहार नहीं है और उसमें दिवाली की मुरली चल जाए, दिवाली के समय होली की मुरली चले, तो उसमें लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे ना कि क्या है आखिर आज होली के दिन दिवाली की मुरली चल रही। तो वो जवाबदारी मेरी है, त्योहार है, दिन है जिसके ऊपर बाबा कह रहे हैं। मैं कभी भी रिपीटेशन, रिपीट करने के पहले पढ़ता हूं, पढ़ने के साथ तारीख और समय देखता हूं कि इस तारीख को रिपीट होगी। अभी 18 जनवरी आ रही है, 18 जनवरी की मुरली मुझे सेट करनी है, उसके अनुसार मुझे वरदान लिखना है, उसी अनुसार मुझे अव्यक्ति सारे लिखने हैं, क्योंकि मास ऐसा है पूरा जनवरी मास में सब जगह तपस्या की लहर करनी है। तो तपस्या से कनेक्टेड जितनी बातें हैं मैं जनवरी में सेट करने की कोशिश करूंगा, उसके लिए मैं समय देता हूं, बाकी आगे पीछे जितनी है वही चलती
है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। इससे ये देखने को मिलता है कि बाबा कैसे अपने बच्चों को निमित्त बना करके चलाते हैं। ये अभी मुरली के डेट में चेंज करना, उस डेट पे लाना, परमात्मा के महावाक्यों को ऐसे सेट करना, ये बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो उसको इतना निर्माण हो करके बाबा के लिए कितना समर्पणता चाहिए कि हमें परमात्मा यूज करें उसके इस ज्ञान को कैसे उनके बच्चों तक पहुंचाने के लिए। ऐसे राजू भाई जी हमारे बीच में है, कितना हमारा सौभाग्य है। बाकी दादियों के जो रूहानी प्यार के बारे में आज का जो क्लास है, लेकिन हमने सुना है कि दादी जी और दीदी जी लॉ और लव का बैलेंस रख के चलते थे, क्योंकि सिर्फ लव ही देते रहेंगे तो लॉ भी चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें विस्तार में बताइए, कैसे उन्होंने लॉ और लव का बैलेंस रखा और आपने उनसे क्या लिया था।
कई बार माँ जो होती है ना बच्चों को बहुत प्यार देती है, उससे बच्चे बिगड़ जाते हैं, इसलिए बाप थोड़ा उसको आंख दिखाता है, डांट देता है, जिससे वो गलत ना हो जाए। तो दीदी और दादी ने दोनों पार्ट बजाए, लॉफुल भी और लॉफुल भी। प्यार देने में कमी नहीं रखी, लेकिन कोई मर्यादा का, कोई नियम का उल्लंघन ना करे। मान लो आज फैमिली है, हमारी मूल धारणा है पवित्रता की, दृष्टि वृत्ति भी हमारी चंचल ना हो, हंसी मजाक करना, ऐसे ही बातें करना, खड़े होकर के इधर उधर टोंट करना, या चलते चलते खाना पीना, बोलते रहना, आवाज में आना, ये सब बातें अगर दादी दीदी के पास पहुंच जाती थी तो लॉफुल के साथ साथ वो लॉफुल हो जाती थी। देखो यज्ञ है, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, अगर आपको रहना है तो इन बाउंड्री के अंदर रहना है, और नहीं रहना तो दुनिया पड़ी हुई है बहुत सारी। दीदी तो यहां तक कहती थी, देखो अगर तुम विकारों को नहीं जी सकते तो शादी करनी है तो मुझे बताना, मैं करा दूंगी तुम्हारी, रमणीकता से हंसते हंसते। माना कि कोई भी फैमिलियरिटी नहीं चाहिए। क्यों तुम इसके साथ अकेले में बैठ के बातें कर रहे हो, क्यों इधर उधर हंस रहे हो, कोई भी देखेगा लगेगा ये बहन भाई साथ रह करके कहीं कहीं फंसे हुए तो नहीं है, कोई अटैचमेंट तो इनकी नहीं है। तो हम सबको भाई बहने हैं, भाई भाई हैं, हमारा परिवार है, लेकिन परिवार में प्यार के साथ साथ नियम बहुत पक्के होने चाहिए, लॉफुल। जरा भी हमारी मर्यादाएं टूटे नहीं। हर एक मर्यादा में दादियों ने हम सबका ध्यान खिंचवाया और क्लास इतनी पावरफुल कराती थी जो लोग डर जाए, डराती नहीं थी लेकिन ऐसे लगे ये गलती मेरे से हो गई, ये नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसी बातें जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ बनाए, हमारे चरित्र को ऊंचा उठाए, चरित्र बनाने के लिए दादियों ने लाभ उठाए, नियम बताए और उसको पालन करने के लिए लॉफुल बने कि भाई कैसे इनको पालन किया जा सकता, उसके लिए प्यार दिया, अगर कोई कोई तकलीफ है उसको उसको साथ दिया, सहयोग दिया। माँ बाप बच्चे की क्या पालना करेंगे जैसा हमारे लोगों की दादियों ने पालना की। अगर एक बीमार हो गया तो उसके पास फल जाने चाहिए, उसे मिलने जाओ, उसे बात करो, उस दादी खुद आ जाती थी कमरे में, तो वो सब पालना थी, वो प्यार था। लेकिन जहां पर नियम मर्यादाएं हैं, जो हमारी बाउंड्रीज हैं यज्ञ की, वो कहीं भी उल्लंघन नहीं होनी चाहिए। उसके लिए योग है, पढ़ाई है, श्रीमत है, उस पर बाबा और दादियां हमेशा ध्यान खिंचवाती थी। हर जगह पर क्लास होती थी स्पेशल, कोई भी कंप्लेन गई तो डायरेक्ट अगर नहीं बोलना है तो नहीं बोलेंगे, लेकिन क्लास में वो सब इशारे मिलेंगे, ये नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है।
मतलब हमारा अगर ध्येय ऊंचा है और कोई शिक्षा मिल रही है और उसके पीछे अगर इंटेंशन सही है तो उस लॉ में भी लव समाया हुआ है। तो एक और मुरली के बारे में ऐसा एक क्वेश्चन आ रहा था कि ये जो मुरली का सार, क्वेश्चन आंसर, धारणा, वरदान होता है, ये फिक्स होता है या चेंज भी होता है? एक ये है और साथ में उसके मुरली में कई बार रात्रि क्लास आता है, कई बार नहीं आता है, कई बार मम्मा की मुरली आती है, तो ये कैसे कौन तय करता है या आप उसको कैसे चूज करते हैं, और या मुरली और रात्रि क्लास में फर्क क्या है?
ऐसा है कि रात्रि क्लास हमारे पास सेलेक्टेड हैं, 100-150 हैं जो टेप मशीन से टाइप किए गए हैं, जो रिकॉर्डिंग थी। और मम्मा की मुरलियां, एक बार डायरी मुझे मिली थी, किसी दादी ने लिखी थी, छोटी छोटी मुरलियां, करीब 300 मुरलियां, 250 मुरलियां थी, छोटी छोटी मम्मा की लिखी हुई थी। तो जहां पर लगता है मुरली में बहुत रिपीटेशन है, माना वही बातें बार बार आ रही हैं, तो थोड़ी सी वो पॉइंट्स हटा के और उसकी जगह पर रात्रि क्लास या मम्मा की मुरली हम डालते हैं। वो हमारे को बाबा ने सेवा दी है और देखता हूँ ये मुरली में जगह है, कुछ कारण से कम है उसमें जगह, तो उसको मैं वहां पर भरता हूँ उस जगह को, जिससे पूरा पेज लगे, फुल मिला। और कम से कम एक घंटा तो क्लास चले। अगर दो पेज ही हमने भेज दिया और एक पेज नहीं भेजा, कम भेजा, तो क्लास कराने वाले को लगता है कि भाई अभी मैं क्या सुनाऊं। तो पूरा मटेरियल मुझे कम से कम एक घंटे का तैयार करके देना है, उसमें मैं मम्मा की मुरली डालूं या बाबा का रात्रि क्लास डालूं या कोई दूसरा क्लास डालूं, लेकिन लक्ष्य रखते हैं कि एक घंटे का होमवर्क जाना चाहिए, उसके अनुसार सेट करते हैं।
ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत अच्छा भाजी, थैंक यू। एक और लास्ट क्वेश्चन ऐसा था कि आपने बताया कि जब आपका समय वना शुरू में तो सिर्फ टाइपराइटर था, पहले तो नोटबुक में ही लिखते थे, बाद में आप स्टार्टिंग में 100-150 मुरलियां टाइप करके भेजते थे, फिर वो 700 तक गई, फिर हजारों तक गई, अभी तो लाखों तक है देश विदेश में। और अभी भी मुरलियां जो है पोस्ट से जाती है, प्रिंट होती है, मधुबन में भी हम देखते हैं सेंटरों पर पहुंचती है। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था कि आज डिजिटल वर्ल्ड इतना बड़ा है, आप भी बोल रहे थे हर एक के हाथ में मुरली आती है, एक क्वेश्चन ऐसा था कि फिर अभी भी मना सिर्फ आप डिजिटली मुरली भेज करके उसी को वो सेंटर पे प्रिंट करें, वो सिस्टम क्यों अभी तक नहीं आया, अभी तक भी पोस्ट से क्यों मुरली जाते, उसके पीछे का आप थोड़ा सा रहस्य बताएं।
वैसे विदेश इन साधनों को यूज करने का बहुत आगे जा रहा है। हमारे भारत में अभी अभी थोड़े समय से, ये सरकार जब से आई तब से इस पर ध्यान दिया है इसने, ज्यादा प्रचार हो रहा है। अभी तक भी कई गांव में इलेक्ट्रिक नहीं है, अभी तक भी कई गांव में फोटोकॉपी मशीन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। सेंटर्स पर भी कंप्यूटर रखे हैं तो प्रिंटर नहीं है, तो हम उनको ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते कि आप अपने आप निकालो। और सभी ब्राह्मणों को होता है कि मधुबन से छपा हुआ कुछ आना चाहिए, प्रिंटेड आना चाहिए, तो इसलिए ज्यादा कॉपी नहीं जाती। कुछ चीजें तो हमने बंद कर दी, डिजिटल ही कर दिया, जैसे पत्र पुष्प। जब कोविड आया तो पत्र पुष्प हमने स्टॉप किया। बहुत मेहनत है, पहले प्रिंटिंग करो, फिर उसको मोड़ो, फिर पोस्ट करो, फिर टिकट लगाओ, एड्रेस डालो, कई घंटे लगते हैं और कई हैंड्स लगते हैं, हजारों कॉपियां जाती हैं। लेकिन जहां सुविधाएं हैं, और जो बहनें कहती हैं कि भाई जी आप हमको नहीं भेजो, हम प्रिंट कर लेंगे, हम कर लेंगे, उनकी बंद कर देते हैं। और जो कहती नहीं, हमको तो मधुबन की कॉपी चाहिए, हमारे पास साधन नहीं है, उनको हम भेजते हैं। तो मधुबन से जो मुरलियां जाती हैं भारत के अंदर जाती हैं अभी प्रिंटेड, बाकी विदेश में सब ऑनलाइन ही जाती है। हमारी 20 भाषाओं में, करीब 20 भाषाओं में इंटरनेट पर मुरली है। और सारी मुरलियां जो ट्रांसलेशन होती हैं, पहली तैयार करता हूं मैं, यहां से लंदन जाती है, इंग्लिश होती है, इंग्लिश के बाद दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेशन होती है। और भारत की जो 6-7 भाषाएं हैं साउथ में, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, बहुत सारी भाषाएं इधर है, उड़िया है इधर, पंजाबी है, तो इन सब भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए मैं पहले से ही उनको 1 मास पहले से भेज देता हूं। अभी हमारी जनवरी की मुरली तैयार हो रही है, हो गई लगभग, तो नवंबर में बैठे हैं, तो जनवरी तक 3 महीने पहले हमको करना पड़ता है। और उसके अनुसार हम पहले जो ट्रांसलेशन करने वाले उनको भेज देते हैं, ट्रांसलेशन भी करते हैं, फिर आवाज में भी, जिनकी आवाज थोड़ी अच्छी है, स्वीट है, उनकी आवाज में भरवा करके आवाज और सॉफ्ट कॉपी दोनों ही कंप्यूटर में इंटरनेट पर रहती है। जिनको हम पासवर्ड देते हैं वही खोल सकते हैं। पासवर्ड हमारे पास से भी दिया जाता है ऑफिस से, और लंदन में सचिन भाई को जवाबदारी दी गई है, वो दोनों करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। जैसे पूरे क्लास का जो भाव मैं सार देख रहा हूँ कि भावना बहुत जरूरी है। भाई जी कह रहे हैं, दीदी ने भी कहा कि दिमाग माना माइंड का कम यूज करके दिल, जो भावना से जुड़ी चीज है, उसमें अनुभव समाया हुआ है। तो मुरली की भी बात, जैसे भाई जी ने कहा कि मधुबन से अगर कुछ प्रिंट हो करके इनकी मेहनत से वहां तक पहुंचता है, जैसे हम सभी को भी अनुभव होगा कि जब हम मुरली मोबाइल में पढ़ते हैं और हाथ में पेपर प्रिंट लेकर के पढ़ते हैं, उसमें भी काफी फर्क है। तो इसी तरह मधुबन से आने वाली मुरली जो भावनाओं के साथ, यहाँ के वातावरण के साथ वो पहुंचती है, तो उसका एक अपना उसका विशेष बन जाता है। और पूरे क्लास में भी मैंने ये देखा कि बाबा के साथ क्या अनुभव करना हो, जो हमारे एंसेस्टर आत्माएं हैं, दादी दीदियां हैं, उनको भी अनुभव करना हो, उनका प्यार पाना हो, तो वो भावना से हम बाबा के साथ जुड़े और उनके साथ वो अनुभव हम अभी भी वर्तमान समय भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई जी को। सो आज हमारे बीच में आदरणीय राजू भाई जी, जो और दूसरा एक बहुत अभिमान, शुद्ध अभिमान कहो, प्राउड फील हो रहा था कि कितनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने भाई साहब के ऊपर सौंपी है, दीदियों दादियों ने उनके ऊपर इतना विश्वास रखा, और आज भी आगे जब तक यज्ञ चलता रहेगा, ये भाई जी अपनी ये सेवाएं हम सभी तक, बाबा के ये शुभ महावाक्य हम तक पहुंचाते रहेंगे, और आपकी जो ये हेल्थ है, वेल्थ है, ये ऐसी आगे बढ़ के अच्छी रहे, और हम आपकी सेवाएं लेते रहेंगे। ऐसी शुभ कामनाओं के साथ बहुत भाग्यशाली हम आज सभी भाई साहब से उनके महावाक्य, उनके अनुभव सुने। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाई साहब। ओम शांति।